कार्यक्रम सत्यवचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। श्रोताओं, आज हम अध्ययन कर रहे हैं गिनती की पुस्तक का, जो इसराइलियों द्वारा सिने पर्वत से आरंभ की यात्रा को कनान की सीमा मुआब के मैदान तक की यात्रा से जोड़ती है। आइए सुनते हैं एक मधुर गीत।
कितना महान, उसके जैसा कोई है कहां। उसके चरणों में सजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहां। उसके चरणों में सजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब भी प्रभु की दया से कुशल पूर्वक हैं। मित्रों, जैसे कि आपको मालूम है कि हम इन दिनों गिनती की पुस्तक से अध्ययन आरंभ कर चुके हैं और पिछले अध्ययन में हमने पहले अध्याय का अध्ययन आरंभ किया। आज हम अपने अध्ययन को और आगे बढ़ाएंगे और इसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार परमेश्वर ने अपने लोगों से बातचीत की। लेकिन इसके पूर्व आइए हम प्रार्थना करें और परमेश्वर से सहायता मांगें। हमारे प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके जीवित और सामर्थ्य वचन के लिए। आज जब हम आपके वचन से मनन चिंतन करना चाहते हैं, उसमें से सीखना चाहते हैं, हमारी विनती है कि आप हमें से प्रत्येक की आत्मिक आंखों को, हमारे कानों को, हमारे हृदय और विचारों को खोल दें, हमें एकाग्रतापन दें, ताकि जब हम आपके वचन से सीखते हैं, मनन चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, तो प्रभु आपका जीवित वचन हमारे हृदयों से बातचीत करने पाए, ताकि जो आपने अपने उन इस्राएली लोगों से किया था वो आज हमारे जीवन के लिए भी लाभकारी हो सके, हम भी उनसे नई नई बातों को अपने जीवन में सीख सकें और उसके अनुसार चल सकें। जो तकलीफ में है, बीमारी और मुसीबत में है, प्रभु आप उनकी भी सुधि लीजिए। इस समय फिर से एक बार हम सबको आपके हाथों में अर्पित कर देते हैं और प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आइए हम गिनती की पुस्तक उसके एक अध्याय और उसके 18 पद को पढ़ें। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मूसा और हारून ने दूसरे महीने के पहले दिन सारी मंडली इकट्ठी की, तब इसराइलियों ने अपने अपने कुल और अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार 20 वर्ष व उससे अधिक अवस्था वालों के नामों की गिनती करवा के अपनी अपनी वंशावली लिखवाई। यहाँ पर हम पाते हैं कि उन्होंने अपने वंशज की घोषणा क्यों की। परमेश्वर के वचन में वंशज का महत्व इतना क्यों है? मित्रों, इनसे तीन प्रकार का उद्देश्य सिद्ध होता है। पहला, जो लोग इसके प्रति अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए यह लाभकारी है। अपने पूर्वजों के बारे में जानना अच्छी बात है कि आपका मूल वंश क्या है। और दूसरी बात, पवित्र बाइबल में अनेक नाम और वंशजों का गायब होना तथा संग्रहित होने की महत्ता इस बात में है कि यीशु मसीह की पीढ़ी ज्ञात हो सके। उत्पत्ति के अध्ययन में हमें इस बात का पता लगा कि जिस प्रथम श्रृंखला को अस्वीकार किया गया और बाद में भुला भी दिया गया, और तब प्रभु यीशु वाली वंशावली उभरी जो संपूर्ण धर्मशास्त्र में दीख पड़ती है। नया नियम का आरंभ एक वंशावली से होता है और संपूर्ण नया नियम का आधार इसी वंशावली की सच्चाई पर निर्भर करता है। यही वंशावली लिपिबद्ध की गई और संभवतः उस युग के यहूदी मंदिर में जनता के लिए प्रदर्शित भी थी। शायद शत्रुओं ने अनेक बार उसका अवलोकन भी किया होगा, इस आशा से कि संभवतः यीशु को दाऊद की राजगद्दी पर बैठने का संवैधानिक अधिकार ना हो। मित्रों, यह एक दिलचस्प बात है कि यीशु की वंशावली पर शत्रुओं ने कभी भी कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया। और तीसरी बात हम देखते हैं, परमेश्वर ने अंतर जातीय विवाह पर प्रतिबंध लगाया और एक सच्चे इसराइली को अपने वंशावली की उद्घोषणा करना होता था। वे उस वाचा के उत्तराधिकारी थे जो इब्राहिम से बांधी गई थी। वंशज के आधार पर ही सुनिश्चित होता था कि कौन याजक पद के योग्य है अथवा नहीं। इस बात का एक उदाहरण नहमिया की पुस्तक में मिलता है, जिसे हम नहमिया 7 अध्याय उसके 63 से 64 पद में पाते हैं। लिखा हुआ है, और याजकों में से होबायाह की संतान, हक्कूस की संतान और वर्जिले की संतान, जिसने गिलादी वर्जिले की पुत्रियों में से एक को ब्याह लिया और उन्हीं का नाम रख लिया था। इन्होंने अपने पूर्वजों के पंजीकरण में अपना नाम खोजा, परंतु उसका पता नहीं पा सके, इसलिए उनको अशुद्ध समझा गया और याजक पद से निकाल दिया गया। मेरे मित्रों, लेवीय जो अपने वंशावली को घोषित करने में असफल ठहरते, उन्हें पुरोहित बनने से रोक दिया जाता था। आजकल हमारे लिए इसमें एक बड़ा संदेश है। उस युग की कल्पना करें जब एक नवयुवक से यह प्रश्न पूछा जाता कि क्या आप एक इसराइली हैं। यदि वह उसका उत्तर देता, ठीक है, मुझे आशा है कि मैं इसराइली हूं, परंतु जब तक मैं मर नहीं जाता मैं सुनिश्चित नहीं हूं, तो आपके विचार से उसके साथ क्या होगा? वे उसे धक्के मारकर बाहर कर देंगे। मान लीजिए दूसरे युवक से भी प्रश्न करते हैं, क्या तुम इसराइली हो? यदि वह उत्तर दे, अच्छा, मैं भरसक इसराइली बनने का प्रयास कर रहा हूं और आशा करता हूं कि शीघ्र ही बन जाऊंगा, तो क्या वे उसे स्वीकार करेंगे? मित्रों, क्या आपको पता है कि उनके लिए इसराइली घोषित करना कितना महत्वपूर्ण और आवश्यक है? प्रत्येक को जो जानना चाहिए कि वे इब्राहिम की संतान हैं। अब मैं आपसे एक व्यक्तिगत प्रश्न पूछता हूं, क्या आप अपने मसीही वंशज होने की घोषणा कर सकते हैं? यदि आप नहीं जानते कि हां कहें या ना, तो मेरा मानना है कि आप इसकी घोषणा करने में समर्थ हैं। कृपया ध्यान से सुने, पहला यूहन्ना की पत्री 3 अध्याय उसके 16 पद में क्या लिखा है। प्रियो, हम परमेश्वर की संतान हैं और अब तक प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या होंगे, पर यह जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके सदृश होंगे, क्योंकि हम उसको ठीक वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। मेरे मित्र, क्या आप ऐसा कह सकते हैं? आपको मालूम हो कि हमारी वंशावली भी महत्वपूर्ण है। यदि हम मसीह पर विश्वास लाने के द्वारा उसके सच्चे संतान या बालक बन गए हैं, तो हम परमेश्वर के वारिस हैं और मसीह यीशु के साथ संगी वारिस भी। इसे हम गलतियों की पत्री 3 अध्याय उसके 20 पद में पाते हैं। लिखा है, और यदि तुम मसीह के हो तो इब्राहिम की संतान और प्रतिज्ञा के अनुसार उत्तराधिकारी भी हो। और हम आगे पढ़ते हैं, और कोई दूसरी मार्ग नहीं, केवल मसीह यीशु पर विश्वास के द्वारा ही आप संतान बनते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसके 12 पद में हम पढ़ते हैं, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। यह अधिकार उनको मिला है जो न कम न अधिक केवल उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। और हमारी वंशावली भी महत्वपूर्ण है। यदि मसीह पर विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर के संतान बन गए हैं तो परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस भी हैं। गलतियों की पत्री 3 अध्याय उसके 29 पद में लिखा है, और यदि तुम मसीह के हो तो इब्राहिम की संतान और प्रतिज्ञा के अनुसार उत्तराधिकारी भी हो। रोमियों की पत्री 8 अध्याय उसके 14 से 18 पद में हम पढ़ते हैं, क्योंकि वे सब जो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं वे परमेश्वर की संतान हैं। तुमने दासत्व का आत्मा नहीं पाया है कि फिर भयभीत हो, परंतु पुत्रों के समान लेपालकपन का आत्मा पाया है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा स्वयं हमारी आत्मा के साथ मिलकर साक्षी देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। यदि हम संतान हैं तो उत्तराधिकारी भी। परमेश्वर उत्तराधिकारी और मसीह के सह उत्तराधिकारी, जबकि हम वास्तव में उसके साथ दुख उठाते हैं कि उसके साथ महिमा भी पाएं। मेरे मित्र, आप इसे जान सकते हैं कि प्रभु यीशु के लहू के द्वारा नया जन्म पाकर आप परमेश्वर के परिवार के एक सदस्य बन सकते हैं। इस युग की अंधकारमय यात्रा में केवल वही एक मार्ग है। मेरे मित्र, आपको समझना चाहिए कि आप कौन हैं। आपको जानना चाहिए कि आप परमेश्वर की संतान हैं। यदि आपको निश्चय न हो तो निश्चय होना चाहिए, और यह निश्चय अभी हो सकता है। अब कैसे निश्चय होगा? परमेश्वर से और उसके वचन के द्वारा। ऐसा नहीं कि जो आप सोचते व महसूस करते हैं। उसका कथन है कि यदि आप यीशु मसीह पर भरोसा रखेंगे तो आप उसके संतान बनते हैं। परमेश्वर के वचन पर आप निर्भर हो सकते हैं। मित्रों, यहाँ इसराइल के 12 गोत्र हैं और प्रत्येक गोत्र की संख्या दी गई है। यदि आप जोड़ घटाने की मशीन का उपयोग इस अध्याय के लिए करें तो इसे बिल्कुल सही पाएंगे। हम गिनती की पुस्तक 1 अध्याय उसके 21 से 23 पद में पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, और रूबेन के गोत्र के गिने हुए पुरुष 46,000 थे, और शिमोन के वंश के लोग जितने पुरुष और अपने कुलों और अपने पितरों के घरानों के अनुसार 20 वर्ष व उससे अधिक अवस्था के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने गए, और शिमोन के गोत्र के गिने हुए पुरुष 59,300 थे। इसी प्रकार से यह सूची पद 46 तक उपलब्ध है। हम 46 पद में पढ़ते हैं, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, और वे सब गिने हुए पुरुष मिलाकर 603,550 थे। अब हमें पता चलेगा कि लेवी वंश की गिनती नहीं है। हम उसके आगे पढ़ते हैं 47 से 50 पद में। लिखा हुआ है, इनमें लेवी अपने पितरों के गोत्र के अनुसार नहीं गिने गए, क्योंकि यहोवा ने मूसा से कहा था कि लेवी गोत्र की गिनती इसराइलियों के संग न करना, परंतु तू लेवियों को साक्षी के तंबू पर और उसके कुल समान पर निदान जो कुछ उससे संबंध रखता है उस पर अधिकारी नियुक्त करना, और कुल समान सहित निवास को वे ही उठाया करें और वे ही उसमें सेवा टहल भी किया करें, और तंबू के आसपास वे ही अपने डेरे डाला करें। युद्ध के लिए उनकी संख्या न लेने का कारण यह था कि वे पूर्णतः मिलाप तंबू अर्थात इसराइली पूजा स्थल के प्रति उत्तरदायी थे। प्रत्येक संध्या जब वे शिविर में प्रवेश करते तो उसे खड़ा करते और चलते अर्थात प्रस्थान के समय उसे बांधते थे। हम गिनती 1 अध्याय उसके 51 से 53 पद में आगे पढ़ते हैं, और जब जब निवास का कुछ हो तब तब लेवी उसको गिरा दें, और जब जब निवास को खड़ा करना हो तब तब लेवी उसको खड़ा किया करें, और यदि कोई दूसरा समीप आए तो वह मार डाला जाए, और इसराइली अपना अपना डेरा अपनी अपनी छावनी में और अपने अपने झंडे के पास खड़ा किया करें, पर लेवी अपने डेरे साक्षी के तंबू ही के चारों ओर खड़े किया करें, कहीं ऐसा ना हो कि इसराइलियों की मंडली पर कोप भड़के और लेवी साक्षी के तंबू की रक्षा किया करें। मित्रों, हम यहां पर देखते हैं कि इसराइली लोगों के लिए यह जानना जरूरी था कि वे कौन हैं, अर्थात कौन थे, अतः वंशावली उनकी क्या है। यह भी महत्वपूर्ण था कि हर एक व्यक्ति जाने कि वे कहाँ के थे, तब उसे शिविर में एक निश्चित स्थान मिलता था। यही बात हमारे लिए भी उपयुक्त है, हमें अपने वंशावली जानना भी जरूरी है। यह तथ्य कि हम परमेश्वर के परिवार के और उसके बच्चे हैं, और यह भी मालूम होना चाहिए कि हम कहाँ के हैं। मित्रों, हम अगले अध्याय में इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ पर अध्याय एक समाप्त होता है और अब हम अध्याय दो से अपने अध्ययन को बनाए रखेंगे। अध्याय दो का विषय है निर्जन प्रदेश की यात्रा समय 12 गोत्रों का स्थान और उनका स्तर। पहले अध्याय में हमें जनगणना संबंधित जानकारी प्राप्त हुई। प्रत्येक इसराइली को पता चला कि वह कौन था, उसे इसकी भी जानकारी होनी थी कि वह कहाँ का है। निर्जन प्रदेश यात्रा के इतने लंबे समय में उनके शिविरों की स्थिति और क्रमबद्धता, प्रयाण अर्थात चलना और गीत गाना परमेश्वर के आदेश निर्देश में रहा था। मित्रों, हमें ज्ञात है कि उन्होंने अपने शिविरों पर ध्वज अर्थात झंडे फहरा रखे थे। ये झंडे ऊपर फहराए गए थे, इन पर क्या अंकित था? पुराने नियम के दो विद्वानों के विचार आपके समक्ष मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं। पंचतंत्र 3 की टीका से उद्धृत है, न ही मूसा की व्यवस्था में और न ही पुराने नियम में इन ध्वजों अर्थात झंडों के आकार व चरित्र का कोई उल्लेख हमें मिलता है। यहूदी पंडितों की परंपरा के अनुसार यहूदा के ध्वज पर सिंह का चित्र था, रूबेन का प्रतीक कुछ मानव समान या मनुष्य का सिर था, एप्रेम का चिन्ह बैल, दान का उकाब। इसलिए यहेजकेल की वर्णित स्वर्गदूतों के समूह में इन्हीं चार ध्वजों के प्रतीक चिन्हों का वर्णन हमें मिलता है। मैं इस बात पर कुछ अधिक नहीं कहना चाहता हूं, कारण अधिक व्याख्या करने से खतरा पैदा हो जाता है। कई लोग तो शिविर के प्रबंध में आकाश के तारों की तुलना करते हैं। तारों के प्रकाश अथवा राशि चक्र में अनेक लोगों ने सुसमाचार अथवा उनके भविष्य को पाने की चेष्टा की है। शेक्सपियर ने कहा, यह हमारे नक्षत्रों अर्थात सितारों में नहीं वरन हमारे अधीनस्थ कर्मचारी में निहित होता है। हमारी समस्या स्वयं में निहित है, ना कि ऊपर कहीं नक्षत्रों में। सुसमाचार तारों में नहीं पर परमेश्वर के वचन में बसा है। मानव जाति के लिए कोई बहाना नहीं, क्योंकि वे सुसमाचार केवल सितारों में ही नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि में परमेश्वर के ईश्वरत्व और अनंत शक्ति सामर्थ्य को प्रकट करते हैं। ध्वजों पताकाओं में नाम गोदना अथवा चिन्ह अंकित करने का कोई महत्व नहीं, क्योंकि हमें मालूम है कि यह परंपरा सदैव सत्य नहीं होती है। हम आगे देखते हैं शिविर का प्रबंध। गिनती की पुस्तक 2 अध्याय उसके 1-3 पद में हम आगे पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, इसराइली मिलाप वाले तंबू की चारों ओर और उसके सामने अपने अपने झंडे और अपने अपने पितरों के घराने के निशान के समीप अपने डेरे खड़े करें, और जो अपने पूर्व दिशा की ओर जहां सूर्योदय होता है अपने अपने दलों के अनुसार डेरे खड़े किया करें, वे ही यहूदा की छावनी वाले झंडे के लोग होंगे और उनका प्रधान अम्मीनादाब का पुत्र नहशोन होगा। मित्रों, ध्यान दें कि सारा शिविर मिलाप तंबू के संदर्भ में ही स्थित है। शिविर के मध्य में तंबू और उसके चारों ओर इसराइली निवास करते थे और उनके झंडे व ध्वज ही शिविर में उनके निश्चित स्थान के पहचान व घोतक थे। पूर्व की ओर यहूदा का स्थान था, इस्साकर का गोत्र जिसे हम पद 5 में पाते हैं और जबलून का गोत्र हम पद 7 में पाते हैं यहूदा के साथ उसी ध्वज के नीचे निवास करते थे। यदि ध्वज का प्रतीक चिन्ह सिंह था तो जब भी इन तीन गोत्रों के लोग ध्वज पताका पर सिंह का अवलोकन करते तो उन्हें पता चलता कि उनका स्थान कहां पर है। हम गिनती 2 अध्याय उसके 10 पद में पढ़ते हैं, दक्षिण अलंग पर रूबेन की छावनी के झंडे के लोग अपने अपने दलों के अनुसार रहें और उनका प्रधान सदेऊर का पुत्र एलिसूर होगा। रूबेन के गोत्र का निश्चित स्थान दक्षिण ओर था, जिसमें शिमोन पद 12 और गाद पद 14 में शामिल थे। हम गिनती की पुस्तक 2 अध्याय उसके 18 पद में आगे पढ़ते हैं, पश्चिम अलंग पर एप्रेम की छावनी के झंडे के लोग अपने अपने दलों के अनुसार रहें और उनका प्रधान अम्मीहूद का पुत्र एलिशमा होगा। मनश्शे गोत्र पश्चिम की ओर पद 20 और बिन्यामिन पद 22 तथा एप्रेम 7-7 शिविर में एक ही ध्वजा के नीचे थे। हम गिनती की पुस्तक 2 अध्याय उसके 25 पद में आगे पढ़ते हैं, उत्तर आलंग पर दान की छावनी के झंडे के लोग अपने अपने दलों के अनुसार रहें और उनका प्रधान अम्मीसदै का पुत्र अहियेजेर होगा। शिविर में दान गोत्र के प्रतीक और ध्वजा के नीचे आशेर पद 27 और नप्ताली पद 29 भी सम्मिलित थे। इसराइली लोग बड़े ही क्रमबद्ध ढंग से शिविर में निवास करते थे। प्रत्येक परिवार अपने गोत्र एवं गोत्र में उनके स्थान से भली भांति परिचित थे। हम गिनती 2 अध्याय उसके 33 और 34 पद में पढ़ते हैं, परंतु यहोवा ने मूसा को जो आज्ञा दी थी उसके अनुसार लेवी तो इसराइलियों में गिने नहीं गए, और जो जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी इसराइली उन आज्ञाओं के अनुसार अपने अपने कुल और अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार अपने अपने झंडे के पास डेरे खड़े करते और कुछ भी करते थे। मित्रों, अब हमें मालूम हो गया है कि वे कौन थे और कहां से थे। इसका उन्हें पूरा ज्ञान था। उनके लिए वंशज की जानकारी अर्थात उसको जानना बहुत जरूरी था कि वे शिविर में भी अपने स्थान को पहचाने। वे युद्ध में शामिल नहीं हो सकते थे जब तक उन्हें अपनी स्थिति का सही बोध न हो जाए। इसी प्रकार मसीही युद्ध भी भय और शक के दायरे में नहीं लड़ा जा सकता, लेकिन उसमें निश्चित उद्धार के प्रकाश में ही लड़ना होगा। वर्तमान में हमारे शत्रु शैतान, शरीर और संसार हैं। मेरे मित्र, यदि आपको अपने उद्धार का निश्चय नहीं है तो वे शीघ्र ही आपको जीत लेंगे। प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया में प्रत्येक व्यक्ति को परमेश्वर पिता ने एक निश्चित स्थान प्रदान किया है। हमें बताया गया है कि हम सब एक ही देह में एक आत्मा के द्वारा बपतिस्मा पाए हैं, और जब आप देह में जोड़े गए तो एक सदस्य के रूप में जुटे हैं। पहला कुरिन्थियों की पत्री 12 अध्याय उसके 12 से 14 पद में हम पढ़ते हैं, क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके कई अंग हैं, और देह के सब अंग यद्यपि अनेक हैं तो भी वे एक ही देह हैं, इसी प्रकार मसीह भी है। क्योंकि हम सब ने, चाहे यहूदी हो या यूनानी, दास हो या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा पाया, और हमें एक ही आत्मा पिलाया गया। क्योंकि देह तो एक अंग का नहीं पर अनेक अंगों का समूह है। मित्रों, जब वह आपको उस देह में रखता है तो वहां सेवा के लिए रखता है। प्रत्येक विश्वासी के पास एक वरदान है, आपके पास भी एक वरदान है। उस वरदान का प्रयोग करना ही आपकी मसीही सेवा है। मित्रों, मानव देह में बहुत से अंग हैं और प्रत्येक का कोई ना कोई कार्य है। केवल पैर में ही 20 से अधिक हड्डियां हैं। इसलिए मसीह की देह में बहुत से वरदान हैं और हर एक को उसके दान का प्रयोग करना है। हमको खोजना होगा कि हमारे भीतर या अंदर कौन सा वरदान है। मेरा मानना है कि परमेश्वर ने अपने लोगों को अनेक वरदानों का प्रतिफल दिया है। यद्यपि पवित्र आत्मा जैसा वह चाहता है वैसा ही बांट भी देता है। पहला कुरिन्थियों की पत्री 12 अध्याय उसके 31 पद के अनुसार हमें सर्वश्रेष्ठ वरदानों की धुन होना और प्रार्थना करना चाहिए। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मैं युवा ही था तो मैंने बड़े बड़े प्रभु के दासों को बाइबल सिखाते सुना। मैंने ईश्वर से प्रार्थना की कि मुझे भी ऐसी ही शिक्षा देने वाला वरदान मिले। परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना का उत्तर अद्भुत रीति से दिया। यद्यपि मैं वैसा नहीं पढ़ा सकता जैसा वे सिखाते थे, फिर भी परमेश्वर ने मुझे शिक्षण सेवकाई की इजाजत दे दी, जिसकी कामना मैंने की थी। मेरा मानना है कि हमें सर्वश्रेष्ठ वरदानों की चेष्टा करना चाहिए, परंतु पहचानना होगा कि यह सचमुच सब कुछ पवित्र आत्मा की सार्वभौमिक इच्छा से अर्थात उसके अधीन है या नहीं। मित्रों, दोरकस को स्मरण रखें। वह कपड़े बनाती थी और आपको याद होगा कि जब उसकी मृत्यु हो गई तो उन्होंने शिमोन पतरस को बुलाया और दोरकस के सिले कपड़ों को दिखाया। शिमोन पतरस ने कहा, हम इस महिला को मृतकों में से जिलाएं क्योंकि कलीसिया को इसकी आवश्यकता है, और परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जिलाया। प्रिय मित्र, आपको शिविर में उचित स्थान ग्रहण करना है। क्या आप दूसरों का स्थान हड़प रहे हैं? कलीसिया में क्या आप उस स्थान को घेरे बैठे हैं जो आपके लिए नहीं वरन दूसरों के लिए है? कलीसिया में हमें प्रत्येक सदस्य को उसके उचित स्थान ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहित करना है, जिससे सभी दीन गरीब सदस्य को भी उचित भाग मिल जाए। मित्रों, आपको ईश्वर ने वरदान दिया है जिसे उसकी सेवा में इस्तेमाल करना चाहिए। कृपया दूसरे के काम को करने का प्रयास न करें। आप वही करें जिसे करने के लिए ईश्वर ने आपको बुलाया है, क्योंकि हम कई बार उस कार्य को करते हैं जिसे हमें नहीं करना चाहिए। मैं समझता हूं कि आज परमेश्वर के जीवित वचन ने हमें स्मरण दिला दिया है कि हमें क्या करना है। इतना ही नहीं, हमें हमारे वरदानों का भी सही उपयोग करना है, जिससे कलीसिया की बढ़ोतरी हो और परमेश्वर को महिमा मिले। इसराइली गोत्र को पता था कि उनका स्थान और उत्तरदायित्व क्या है, लेकिन क्या आज हम जानते हैं कि कलीसिया में हमारा स्थान क्या है? क्या हम अपने आप को गलत तरीके से तो उपयोग में नहीं ला रहे हैं? मेरे मित्रों, आज मुझे और आपको जांचने की आवश्यकता है, ताकि हम अपने सही स्थान पर रहकर परमेश्वर के लिए उपयोग किए जा सकें। निर्णय हमें लेना ही होगा। क्या आप तैयार हैं? आप अवश्य विचार करें। आज हमारे अध्ययन का समय यहाँ पर समाप्त होता है, और मैं आशा करता हूँ कि आज के अध्ययन के द्वारा आपको अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त हुआ है। प्रभु आप सबको बहुतायत से अपने आशीष प्रदान करें और सहायता करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
तूने बनाई धरती आसमान अपने एक शब्द द्वारा, तूने सजाई है चारों दिशा अपने सामर्थ्य के द्वारा। तूने बनाई धरती आसमान अपने एक शब्द के द्वारा, तूने सजाई है चारों दिशा अपने सामर्थ्य के द्वारा। क्या है इंसान जो तू उसे याद करे, क्या है इंसान जो तू उसे प्यार करे, क्या है इंसान जो तू उसे याद करे, क्या है इंसान जो तू उसे प्यार करे। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ।